समय सार क्या था 107 सुसब्बिणान दर्शी कम्मदयेन निवेण माच्छन्नो संसार समावन्नो न विजानति सभ्यतो सभ्यम् सभ्यराण दर्शी सभ्य माने संपूर्ण राण माने ज्ञान और दर्शी माने दर्शन और राण दर्शी माने सर्वज्ञ और सर्वदर्शी जो सो सभ्यराण दर्शी माने जो सर्वदर्शी सर्वज्ञ भगवान है भगवान है आत्मा इस आत्मा की बात है त्रिकाली ध्रुव की बात है पर्याय की बात नहीं है सर्वदर्शी और सर्वज्ञ जो भगवान आत्मा है कर्म रयेण नेण आवछन्नो के कर्म रज से आछन्न होकर संसार समावन्नो संसार अवस्था को प्राप्त होता है तो क्या हानि होती है इसकी कि जो उसका सर्वदर्शी और सर्वज्ञानी स्वभाव है वो प्रकट नहीं होता मैंने भगवान की परिभाषा सन 73 में लिखी थी वो पंक्ति मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो मेरी सर्वोदय 30 वाली किताब में है और मैंने 8 या 9 ऐसे सिद्धांत लिखे थे जो किताब के अंत में छापे थे और बाद में वो कई किताबों में छपते रहे कि जो सारे जगत को जानकर उससे अप्रभावित रह सके और जो अप्रभावित रहकर सारे जगत को जान सके उसे भगवान कहते हैं और इसके साथ बड़ी दुर्घटना हुई कि मैंने कहा ना अप्रभावित रहकर जान सके और जानकर अप्रभावित रह सके तो प्रेस वाले जो वो होते हैं कंपोजिटर उसके बाद में प्रूफ रीडर उनको ये बात नहीं जची प्रभावित होकर तो सारी दुनिया मानती है ये अप्रभावित होकर क्या बात है प्रभावित हुए बिना जान सके और जान करके भी प्रभावित ना हो ये तो डिस्क्वालिटी लगती है ना जगत को कि हम तुम्हारा प्रवचन सुनकर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए शांति से अप्रभावित रहकर हमने शांति से आपका पूरा प्रवचन सुना निंदा समझेंगे प्रशंसा तो उन्हें लगा तो उन्होंने दोनों जगह से वो अप्रभावित का आ काट दिया जब मेरे पास फाइनल प्रूफ पढ़ने आया तो मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने वो आ फिर जोड़ा दोनों में जब मैंने दोबारा जोड़ दिया तो कंपोजिटर ने उसे फिर डाल दिया उसमें तो फिर उनके पास गया तो कहिए क्या कौन है वो ऐसे करता तो फिर काट दिया 6 दफे मैंने जोड़ा और 6 दफे उनने हटाया अंत में वो गलत ही छपा मैं जाके प्रेस में बहुत लड़ा तेरी क्या हुआ ये क्या हो रहा है तुमको इसका अर्थ समझ में नहीं आता है तो फोन से मेरे पूछ सकते हो लेकिन तुम मेरे लिखने मैं लिखता हूं बार बार तुम सुधार देते हो क्या है उसका अर्थ हमको ये सारी दुनिया को जानने में जो डर लगता है ना वो इस बात से लगता है कि जो हम जानेंगे तो प्रभावित हो जाएंगे अच्छी चीज होगी तो उसके प्रति हमें राग पैदा हो जाएगा जो बुरी चीज होगी तो उसके प्रति हमें द्वेष पैदा हो जाएगा इसलिए जान नहीं झगड़ा खत्म क्या झंझट में पड़ना ही क्यों इसलिए जो वो पढ़ के जानने का निषेध करते हैं कुछ लोग लेकिन ये जो गाथा है वो सर्वनाण दर्शी वाली गाथा है और वो सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता क्यों प्रकट नहीं होती है उसका कारण बताया और जब वे प्रकट होगी तो ही वे सर्वज्ञ भगवान पर्याय में बनेंगे इस बात को बताने वाली ये मूलतः गाथा है कल में है ना मतलब ये है कि अपने यहां सर्वज्ञ होने से पहले भी त्रागी होते हैं। ये बात अपने बाल बोध पाठमालाओं में भी लिखी, और जब प्रकाश क्लास ले रहा था तो मैंने ये पढ़ा रहा था, पढ़ रहा था, सर्वज्ञ के पहले भी त्रागी क्यों बताया तर्क, मैं घर से सुन रहा था। क्योंकि यदि वो वीतरागी नहीं हुआ पहले और सर्वज्ञ हो गया तो वो अनंत दुखी हो जाएगा। इसलिए शास्त्र में लगा एक समय पहले, कुछ समय पहले वीतरागी और फिर बाद में सर्वज्ञ होता है। और महाशास्त्र तत्वा सूत्र का दसवें अध्याय का जो सूत्र है उसमें ये बात लिखी है, मोह क्षयात ज्ञान दर्शना वर्ण क्षयात अंतराय क्षयात च कैवल्यम। मोह के क्षय से और ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान होता है। तो शिष्य ने कहा कि भाई साहब चार घातिया कर्मों के क्षय से होता है ना, तो चार इकट्ठे ही कर देते कि मोह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय क्षयात च केवलम। फिर ये मोह क्षयात और फिर द्वारा द्वारा कहा, और हमने तो सुना है वो कल सिद्धांत बताया था ना, एक अक्षर कम हो जाए तो एक पुत्र की प्राप्ति के बराबर सुख होता है आचार्यों को। तो आप कहेंगे आचार्यों को पुत्र की प्राप्ति के बराबर सुख, कहीं उपमा खोजिए, और आचार्यों ने ही खोजी है। लोक में गृहस्थों को पुत्री के पुत्र की प्राप्त पुत्रियों की अपेक्षा पहले ही से रहा है, पुत्र की प्राप्ति में कुछ अधिक सुख होता रहा है। और वो जन प्रसिद्ध हैं और उन्हें ये बात गृहस्थों को समझानी थी, इसलिए उन्होंने उनको वो बताई है। और उसका कारण क्या है ये तो मैंने कल बताया था, लेकिन एक बात छूट गई थी वो अभी बता देता हूं। क्योंकि मुनिराज लोग थे, अब उन मुनिराजों को एक पीछी और एक कमंडल और एक शास्त्र रखने की अनुमति थी बस, मतलब होता क्यों, क्योंकि वो स्वयं अपने साथ इससे ज्यादा नहीं ले सकते और दूसरा उनको लेके चले तो वो परा स्वाधीनता नहीं रहती है, वे जहां चाहे वहां नहीं जा सकते, समझे ना। इसलिए जो पीछी कमंडल दूसरे के हाथ में दे देते हैं, अब थोड़ी देर के लिए कुछ दे देना अलग बात है, साथ भी दे नहीं, लेकिन वो अपने पास वे स्वाधीन रहना चाहिए, उन्हें जहां जाना हो वहां जाए, कोई उन्हें रास्ता नहीं दिखाए, वे रास्ता किसी से नहीं पूछते हैं, वे तो मौन लेके चलते हैं तो कैसे पूछेंगे कैसे। तो अभी ऐसे बड़े बड़े श्लोक ऐसे बड़े बड़े शास्त्र होंगे तो कितने शास्त्र लेके चलेंगे। तो अति संक्षेप में उनको वो बात बताई जानी चाहिए, इसलिए वो एक एक अक्षर की कंजूसी करते थे। और याद कंठस्थ रखना है कि अंत की विद्या कंठ का दाम, कंठ की विद्या अंत का दाम, और समय पड़े पर आवे काम, समझे ना। अपने कंठ में विद्या हो और अंटी समझते हैं जेब, समझ लो आज की भाषा में, उसमें जो पैसा होगा वही काम आएगा। बैंक में बड़ा पैसा, साहूकार के यहां बड़ा पैसा, काम नहीं आएगा, समय पर नहीं आएगा मिलेगा आपके हाथ में है। और गले की विद्या नहीं, फलाने शास्त्र में फलानी जगह में देख के बताऊंगा, वो यही कहता रहेगा। यदि जो कंठ में होगी तो वो बटा है। और वो सिद्धांत कौन सा के देखो, अभी हमारे पास कितनी रिश्तेदारियां हैं, बस एक माँ बाप, दो चार बाल बच्चे, एक आध बहन भाई, कितने ही संसार है ना, क्यों सर्वज्ञ, मेरा तो और भी कम है, सर्वज्ञों के कम होते हैं ना, क्या समझे। अब हमारा जो सुख दुख है वो यहीं तक सीमित है। आपने सुना होगा चक्रवर्तियों को सूतक नहीं लगता, सुना कभी, अपने को जो सुआ सूतक लगता है ना चक्रवर्तियों को नहीं लगता, तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि उन्होंने अपने लिए सुविधा रख ली। अरे भाई 96,000 पत्नियां, हजारों बेटे, इतना बड़ा परिवार, रोजीना एक आध बच्चा पैदा हो रहा है, रोजीना एक आध मर रहा है, तो लग ही रहा है। पूरे जयपुर का हमको सूतक लगने लग जाए तो कौन सा दिन ऐसा होगा कि जिस दिन सूतक नहीं होगा? क्यों उठाओ राजस्थान पत्र का तो 100-200 की तिया की बैठक और फलाने के समाचार आते ही रहते हैं ना। तो जयपुर जैसा इतना बड़ा परिवार जिस चक्रवर्ती का होगा, यदि उसे लगने लग जाए सुबह सूतक तो एक दिन भी नहीं बचेगा। एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण ये है कि वो इतना ज्यादा होता है ना तो वे अपने बच्चों के नाम तक नहीं जानते फिर भूल जाते हैं, कर जाते हैं। कहाँ उतना ही राग भी कम होता है। एक बच्चे की माँ जितना मरती है बच्चों के पीछे, 10 बच्चों की माँ उतना नहीं मरती है। फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता है? तो हजारों की संतान वाला कैसे करेगा? तो चक्रवर्ती के यहां तो होता नहीं है। अपनी बात क्या चल रही थी कि वो हमें एक भव के माँ बाप और बाल बच्चों की हमें चिंता है, उनके सुख दुख ही हम सुख दुख हैं, और फिर केवल ज्ञान होने में अनंत भवों के माँ बाल बच्चे और माँ बाप और सारे रिश्तेदार। तो मैं पूछता हूं कि इस लोक में कौन मेरा रिश्तेदार नहीं है, ये पोजीशन खड़ी हो जाएगी। और किसका क्या नहीं होगा, सबका अपने पुण्य पाप के अनुसार अच्छा बुरा तो होगा ही ना। पैदा होने वाले मरेंगे भी, बीमार भी होंगे, तो फिर रोजाना बैठ के रोते ही रहो। इसलिए वो पता चलने के पहले पूर्ण वितरागी होना चाहिए कि कोई फर्क ही नहीं पड़े। मान लो पहले भव की कोई अम्मा उसकी और नरक में डंडा खा रही हो, तो मोक्ष छोड़ के भगने की, नरक में जाने की इच्छा होगी उसे बचाने के लिए हैं? पहले भव की कोई अपनी एक आध बहन और उस भव ने उसके कोई गुंडे उसकी इज्जत लूट रहे हो, ख्याल में आप समझ रहे ना, कई दुशासन उसकी साड़ी खींच रहे हो, तो दौड़ करके वहां मोक्ष छोड़ के वहां भागने की पड़ेगी। और नहीं भाग पाएंगे तो वहीं बैठे बैठे रोएंगे। यानी पहले इतने वितरागी हो जाएं कि जगत में कुछ भी क्यों ना हो, उनके अनंत सुख में रंच मात्र भी खलल नहीं पड़े, समझ रहे ना, तो ही उन्हें अधिकार है, तो ही होना चाहिए केवल ज्ञान। इसलिए नहीं होता। अब मन पर ज्ञान क्यों? अभी देखो सब एक दूसरे के मुंह पे एक दूसरे की बुराई करते हैं तो हमें कितना बुरा लगता है। कुछ दिन फिर हमारी नींद खराब हो जाती है, कोई आदमी दो गालियां दे देवे, ये कर देवे, ये कर देवे, तो और मन में तो कितने लोग गालियां देते रहते हैं क्यों? लेकिन वो सबको हमें पता लगने लग जाए कि तुम हमें अभी मन में गालियां दे रहे हो, तो जैसे वो गालियां देते हैं और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, वैसे ही हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी हम प्रेम से प्रवचन कर रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं। अब बहुत लोगों के मन में आ रही होगी कि ये कब खत्म करें, भूलते जाता है, भूलते जाता है। अब हमें पता चल जाए तो प्रवचन करना मुश्किल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहते जब तक हम इतने वितरागी ना हो जाएं, कितने, 3 कसाई के अभाव वाले, कि हमें ये पता चलता रहे कि ये सब हमारे बारे में बहुत बुरा सोच रहे हैं, तो भी हमारा माथा डिस्टर्ब ना हो। क्यों जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ आतंकवादी बैठे हों और वो ये सोच रहे हों मानव बम बन के आए हों, अब यहां से पंडित निकल के वहां से वहां जाएगा तो वहां जाकर के मैं फोड़ दूंगा। क्यों उसके मन में ये भाव आ रहा हो, क्यों? और ये पता चल जाए तो प्रवचन कर पाएंगे क्यों बोलो, संभव नहीं है ना। अंतिम समय तक गांधी जी प्रार्थना करते रहे, रघुपति राजा राजा राम, 1 सेकंड पहले तक, क्यों? ये यदि उन्हें मन से पता लग जाता था कोई आदमी यहां ऐसा है और मेरे गोली मारने वाला है, तो रघुपति राजा राम हो सकती थी? हम अपने अपने मन की कल्पना कर लें। तो अंत समय तक धर्म करना है तो मन पर्याय ज्ञान का नहीं होना बहुत जरूरी है। हमें मन पर्याय ज्ञान नहीं है ये बहुत खुशी की बात है। बहुत से लोग मन पर्याय ज्ञान हो जाए तो मजा आ जाए। क्या मजा आ जाएगा, क्या मजा आ जाएगा कि ये जो मेरी बहू है ना, तो जब ये लड़का शाम को आता है तो ये रात को रोजाना मेरे विरुद्ध कान भरती है। अब मेरे कुछ पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। एक दफे तो जो बोल रही थी और अचानक मैंने सुन लिया, यदि मुझे मन पर ज्ञान हो जाए तो मुझे सब बातें पता चल जाएंगी। तो मैं पूछता, अम्मा जी तूने जो आज सुन लिया उससे तेरे को कितना सुख बढ़ा? अतिंद्रिय आनंद की कणिका जग गई होगी, कसाय जगी, आकुलता जगी, दुख जगा, क्या जगा बोलो? तो यदि ज्यादा रोजिना सुनने को मन में जानने को मिल जाए तो आनंद दुख जगेगा कि नहीं जगेगा? और वो बेचारी बहुएं वो समझते भाई कि कम से कम अपने बेडरूम में कमरा बंद करके तो चाहे जिसको चाहे जितनी भलाई बुराई कर सकती हूं मैं, एक निठल्ला सुनने वाला तो है अपने मन की भड़ास निकालने को। और ये समझाएंगे मेरे तो सब पता लग जाएगा, क्यों? तो कितनी उन बहुओं की दुर्दशा कितनी हो जाएगी, अंदर ही अंदर घुटेंगी कि कुछ नहीं बोल सकती, फिर तो कुछ सोच नहीं सकती। सोचा और सासू जी को पता चला फिर क्या होगा? क्यों सासू और बहू दोनों का सुख बढ़ेगा कि दुख बढ़ेगा? दुख बढ़ेगा ना। इसीलिए तो महिलाओं को मन पर ज्ञान होता ही नहीं। क्या बड़ा मेरा कोई बैल विरोध नहीं है आप लोगों से, मेरी माँ भी महिला थी, बहनें भी महिला हैं, बिटियां भी महिला हैं, क्या बैल विरोध हो सकता है? जो लेकिन वस्तु का जो स्वरूप है, क्यों कि कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि हम उनका नाम बताएंगे जिस शास्त्र में लिखा है? जैसा तुम हमारे प्रति आंख बदल रहे हो ना, ऐसे उनके प्रति बदल दोगे, तुम्हारा क्या फतवा रोसा? ये घटना में एक आपको सुनाता हूं, बहुत मार्मिक है, बहुत पुरानी बात है, 50-55 वर्ष पुरानी बात होगी। मेरे एक बहनोई जी थे, अब तो स्वर्गवास हो गया उनका, बहुत बहुत धर्मात्मा, माने क्रियाकांडी धर्मात्मा, पुराने जमाने के धर्मात्मा, बहुत धर्मात्मा, बहुत, और जितना धर्मात्मा उतने ही तीव्र कसाय वाले, दोनों में टॉपर्स। तो व्यवहार के पक्ष के होते ही होते ही मैं प्रश्न करता था, विरोजिना सुनते थे सभा में। तो ऐसा आया तो वे ये कहते थे कि देखो ये ऐसी बातें तुम अध्यात्म की मत करो, नहीं तो लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, ऐसा वो हमेशा कहते थे। मेरे एक साथी थे, अभी वो हैं भाग्य से जिंदा, तो उनने, मैंने तो नहीं बोला, मैं तो जानता था कि कोई फायदा नहीं है बोलने से, लेकिन उनने कह दिया टोडरमल जी की वो पंक्ति दोहरा दी कि गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन तो मिश्री खाना छोड़े नहीं, ये टोडरमल जी ने लिखा है। ऐसा कहा तो मैंने उनका मुंह पकड़ा, मत बोलो मत बोलो। क्यों? उन्हें इतना गुस्सा आया तो वो बोले, कहने वाला गधा और लिखने वाला। मैंने कहा भैया मैं तुमसे कहता हूं मत बोलो, मैं जानता था, मुझे भी ये याद था। मैं अभी तो मैं ही कहता, मैं वो टूर्नामेंट तक पहुंच जाए, मैं तो उनका साला था और वे मेरे पिताजी की उम्र के थे, मेरी वो बहन भी मेरी माँ की उम्र की थी, इसलिए मेरे से तो वे कुछ भी कह सकते थे। और मैं 18-19-20 वर्ष का होऊंगा, एक आध दो वर्ष शादी के लिए हुए होंगे, अप्पा हुए तो हुए, परमात्मा तो था ही नहीं, तब की बात है घटना। मैंने कहा ये टोरेमल जी आप जानते होंगे, लोलीचंद जी, हाँ, तो यदि हम आचार्यों के नाम बताएंगे तो हम पे गुस्सा आ रहा होगा तो उन पे गुस्सा आ जाएगा। कहाँ लिखा, कौन से आचार्य ने लिखा क्यों कि महिलाओं को मन पर ज्ञान नहीं हो सकता? आजकल तो सब महिलाएं टॉप कर रही हैं, कैसे नहीं हो सकता है? जो पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकते हैं, आज तो इसका जमाना है। अरे भाई शास्त्र में ये तो लिखा है ना, छत्र में गुणस्थान के ऊपर ही मन पर ज्ञान होता है और महिलाओं के पंचम गुणस्थान से ऊपर नहीं होता, हो गया ना उसका अर्थ? अब किसी एक आचार्य का नाम लेने की क्या जरूरत है। अरे आपको मन पर ज्ञान नहीं हो सकता है, आपका सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं। इतनी वितरागता पहले हो, इसलिए वितरागता और सर्वज्ञता का ये नियम है। तो वो कहते हैं कि जगत को जाने और प्रभावित नहीं हो, तो रागी जीव तो प्रभावित हुए बिना रहेगा ही नहीं। या राग होगा उसे या द्वेष होगा, वो नहीं कॉमन नहीं रह सकता। वो पूर्ण वितरागी होगा तो इस सारा जगत को जानकर बिल्कुल अप्रभावित रहेगा, और अप्रभावित रहकर जान सके। अपन भी कहते हैं ना, देखो भाई साहब मैं एक बात कहता हूं लेकिन आप लोग कोई रिएक्शन नहीं करें तो कहते क्या नहीं कहते कहो कहो साहब। नहीं नहीं तुम पहले गारंटी दो, रिएक्शन नहीं कराता। आपस में भी कहते हैं पति पत्नी से, देख तुझे तुम्हें गुस्सा नहीं आया तो मैं एक बात बता सकती हूँ, बोल 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 के गुस्सा तो नहीं आएगा, कहाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं करता, मैं कहता हूं कि यदि ऐसी बात है जिससे मुझे गुस्सा आया तो मत बोल। क्या ऐसा कैसे चल सकता है? वो नाई का किस्सा सुनाता हूं ना मैं, कि नाई के बाल बनाने गया, बोला पंडित जी एक बात क्यों बुरा ना मानो। तो मैंने कहा बुरी बात कहेगा तो गारंटी से बुरा मानूंगा, तू इतना बेवकूफ समझता है मुझे? बुरी बात भी कहना चाहता है और पहले बांध लेना चाहता है कि मैं बुरी नहीं मानू। बुरी बात कहेगा तो मैं तो बुरा मानूंगा, बोलो क्या कहना है? तो नहीं कहता हूं। मैंने कहा बेटा कह ही ले, तुम जो होगा तो देखा जाए। समझे ना? तो मेरे कहने का मतलब एक वस्तु के स्वरूप में कितनी व्यवस्था है, कि वो ज्ञान जो तेरे को सुखकर हो वो ही ज्ञान है, जो तेरी आकुलता को बढ़ाए वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। ख्याल में है ना? तो वो कहते हैं कि चित्त में वितरागता का होना बहुत जरूरी है। तो वो इस बात को इस गाथा में बता रहे हैं कि मोह के उदय में लिखा ना, कहां कहां है गाथा, संसार सम कम रेण आछन्नो कर्म रूपी रस्य आछन्न ए आत्मा, यद्यपि उसका स्वभाव सबको लोकालोक को जानने का है लेकिन वो उस लोकालोक को जानने रूप प्रण में नहीं होता है। ये बात वो यहां कह रहे हैं, काय से आछन्न होकर कर्म से, कौन से कर्म से बोलो राजेंद्र, कौन से कर्म की बात है, कहाँ है बोलो, कौन से कर्म की बात है, किसकी चर्चा चल रही है? पुण्य भाव रूप कर्म से आछन्न, क्यों चर्चा तो वही चल रही है ना, पुण्य पाप अधिकार की, कि पुण्य भाव भी विद्यमान है जब तक, तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, ये गारंटी है। अब जिसके होने पर नहीं होने की गारंटी हो उसको हम उसी के होने का कारण माने, कोई छोटा मोटा अज्ञान है? अभय जी ख्याल में नहीं मान गया? नहीं, मैंने धर्म के 10 लक्षण में लिखा है, यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाही और खून भी अशुचि है, यह पुद्गल परछाई, तेरी शुचिता ज्ञान है और अशुचिता राग, राग आग को त्याग कर निज को निज में त्याग। क्या अर्थ है इसका? ये मैंने पंक्तियां तब नहीं लिखी थी कि जब धर्म के दर्शन लिखी थी, उसमें तो मैंने कोट की थी जो मुझे याद थी। लिखी तो कब थी मालूम आपको? मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन भोपाल अस्पताल में हुआ था, हमीदिया अस्पताल में, और ये घटना होगी 1960 की है, 60 के 61 की होगी क्या? हाँ मतलब परमात्म होगा, 6 महीने का होगा। तो मेरा ऑपरेशन हुआ, तो जिस दिन ऑपरेशन होना था वहीं झरना का मंदिर पास में है, तो मैं सुबह उठ के अस्पताल से और वहां जाकर के नहाया धोखा करके और फिर बैठ के वहां भगवान की भक्ति करी, तो उस वक्त मैंने पटना 25 दोहे लिखे थे, उन दोहों में से दो दोहे थे, है ना। क्या है इसका अर्थ, यदि हड्डी अपवित्र है तो तेरा क्या बिगाड़ा उसने, वो अपवित्र हड्डी की मौजूदगी में केवल ज्ञान हो जाता है। यदि खून अपवित्र है तो खून की मौजूदगी में केवल ज्ञान हो जाता है, यदि खून भी अशुचि है तो वह पुद्गल परेशान। लेकिन रंज मात्र भी राग, गुरुदेव की भाषा में देव भाव एक तीर्थंकर गोत्र बना है, ऐसा भी भाव वो रंज मात्र दसवें गुणस्थान में होने लायक राग जिसकी हम कोई उदाहरण ही नहीं दे सकते, क्योंकि दसवें गुणस्थान वाला बाहर में कुछ बोलता चालता नहीं है। जो ये उदाहरण तो बहुत तीर्थंकर प्रकृति बंधे हो, जो जो उदाहरण है तीर्थंकर प्रकृति बंधे, उस भाव से भी शुद्ध राग क्यों बोलो प्रकाश, तुम बता सकते दिल में। तीर्थंकर प्रकृति आठवें गुणस्थान के 14 भागों में से छठवें भाग तक बनती है, समझ जाए क्या नहीं, और ये दसवें तक रहता है। अब जी आई ख्याल में, सबको समझा दूं, ऐसा है नियम कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुणस्थान से शुरू होता है और आठवें गुणस्थान के 14 टुकड़ा करो और उनमें से 6 टुकड़े तक तीर्थंकर प्रकृति बनती है, उसके बाद बंधना बंद हो जाती है और राग उसके बाद भी बंधित जो राग से ही है, राग देश से ही बनती है ना। अब वो उसके ऊपर भी राग तो है ना, तो वो जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधे उससे भी ज्यादा निर्मल अच्छा है, यदि तो अच्छा होगा ना है? देखिए वो दसवें गुणस्थान के अंत तक रहने वाला राग वो भी हो तो केवल ज्ञान नहीं होता, बोलो अब कितना खतरनाक है। अच्छा अब राजेंद्र जी के बताऊं कि वो राग अशुभ भाव रूप तो होता नहीं होगा, क्या शांति जी समझ में आ गया नहीं यार, अशुभ की तो उसमें कल्पना नहीं की जा सकती, तो वो शुभ ही होगा ना। तो वो राग ज्यादा अपवित्र है कि वो हड्डी और मांस ये ज्यादा अपवित्र है। धर्म के दर्शन किताब में लिखा है मैंने, लेकिन किसी का ध्यान जाए ना जाए, धर्म के दस लक्षण भी कब लिखी थी, 77-78-79 में आत्मधर्म मेरे पास आया था ना, 77 में आया था और तब से लिखना शुरू की थी, 76 में आ गया था ना, 77 में महाविद्यालय खुला और 76 में आत्मधर्म आ गया था, तो सबसे पहले मैंने चैतन्य चमत्कार नाम का इंटरव्यू लिखा गुरुदेव का और दूसरी से फिर धर्म के दर्शन शुरू कर दिया था। माने उस वक्त भी मेरे ख्याल में ये बात थी, उस वक्त नहीं जब मैं ऑपरेशन कराने गया था, जब तुम्हारा तुम बिस्तर में पेशाब करते होगे तब तेरी हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाई और खून भी अशुचि है तो वह पुद्गल परछाई। एक बात और याद आ रही है, कह दूं कि जब हम ऑपरेशन कराने भोपाल गए थे समझ गई, तो अशोकनगर से गए थे तो बीना पे हमारी जेब कट गई, जो भी पैसा हम ऑपरेशन कराने के लिए ले गए थे तो बीना तक हमारी जेब कट गई, और मेरे ससुर मेरे साथ में थे तो दो ही जने थे हम, फिर वहां पहुंच गए भोपाल, फिर बड़े दादा को वहां से खबर करी, खुरई में रहते थे बड़े दादा, फिर बड़े दादा वहां पैसा लेके आए तब उससे फिर ऑपरेशन हुआ, और उस वक्त कोई लाखों रुपया नहीं लगते थे, हजारों भी नहीं सैकड़ों लगते थे, मगर सैकड़ों की व्यवस्था भी बहुत कठिन थी क्या है? और जो कहते हैं तब भी 110 रुपये महीने की नौकरी करता था मैं अशोकनगर में, دس روپے مہینہ مکان کرایہ میں چلے جاتے تھے، خیال نہیں نا، 100 روپے بچے. اس وقت بھی صرف اسی وجہ سے کہ گرودیو کے تتو گیان کا میں پروکتا تھا، روزانہ مجھے اتنت تیبر ورودھ کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور میری نوکری روزانہ خطرے میں تھی. وہ روزانہ خطرے میں تھی، ایک دن بھی نہیں. میرے پتا جی میرے سے روزانہ کہتے تھے کہ بھیا آپ وہاں سے بھکے یہاں آئے، یہاں سے بھکے کہاں جاؤ گے اب تم کیوں. تو میں کہتا تھا ان سے کہ میں صحیح جو پرتیپادن کرتا ہوں وہ بند کر دوں، کیا کروں بولو آپ، ایسے ڈرو گے تو کہیں بھی جاؤ گے اس دیش میں سب جگہ یہی حالت ہونے والی ہے، اس لیے میں وہ تو بند نہیں کر سکتا ہوں. کیوں؟ وہاں سماج لڑتی تھی، یہاں پر گھر پہ آگے پتا جی سمجھاتے تھے. جب سمجھانے کے نام پہ لڑتے تھے سمجھ لو، کہ تم نہیں کہو تو نہیں کہو تو ایسا نہیں، نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. جو وستو کا سوروپ ہے سمجھے نا، یہ دلی چند اس کے پرمان ہے. یہ دلی چند بیٹھے کھڑے ہو نا، کہ کون جانے کون دلی چند، یہ بھی دکھتے جوان ہیں، یہ میرے سے بھی زیادہ بڈھے ہوں گے، بہت پرانے ساتھی ہیں میرے. کیا تب بھی میں نے اس تتو گیان کو بالکل اسی روپ میں پرستت کیا، سمجھے نا، روزانہ جھگڑا. اور ایسا نہیں کہ یہ کوئی باتیں تھیں نریندر، میرے کو سماج سے نکالا گیا، جاتی باہر کیا گیا، مندر بند کیا گیا. مندر بند کا مطلب سمجھتے ہیں، میں مندر میں درشن بھی نہیں کر سکتا. درشن کرنا ہو تو 2 کلومیٹر دور مندر ہے وہاں جاؤں، وہ سامنے والے مندر میں نہیں کر سکتا. صرف اس لیے کہ آپ اس تتو گیان کو پرتیپادت کرتے ہو، یہ بند کرو. اس لیے مجھے بھاپ آ جاتا ہے کہ آپ لوگ آج کل یہ چھوٹی سی تچھائی باتیں ہوتی ہیں نا، اس میں زیادہ دڑتا سے کھڑے رہے، دڑتا سے کھڑے رہے، کیا اس میں کیا دم ہے. سچ بولتا ہوں اس میں تو میرے پیٹ کا پانی ہی نہیں ہلا، مجھے وکلپ بھی نہیں آیا. میرے کو 2500 فون آئے اس دیش سے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ جواب لکھنا چاہیے، لوگ بہت دھرم میں پڑھتے جا رہے ہیں. میں نے کہا میں نہیں لکھوں گا، نہیں لکھوں گا، ایک پنکتی نہیں لکھوں گا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم لکھیں تو آپ چھاپو گے. پھر میں نے کہا دیکھو چھاپوں گا تو لوگ یہی سمجھیں گے میری اسمتی اس میں ہے. تو ذرا پھر ناراض ہوئے، تو پھر میں نے کہا اچھا چھاپوں گا، تو 2-4 لوگوں کے چھاپ دیے، بہت سادھان، جس میں کوئی گالی گلوچ نہیں تھی، جس میں کوئی گندی بات نہیں تھی، بالکل شدھ سات. کیا ہے اس میں تو کچھ دم ہی نہیں ہے. ہم تو اس گرو کے ششیہ ہیں کہ جس گرو کے سامنے 6 اخبار جین گجت جین درشن کرونا دیپ، 6 اخبار ہر سپتاہ میں 8-8 پیج ان کے اکیلے ورودھ میں بھرے رہتے تھے، اور اتنے ہلکے استر کے آپ کلپنا نہیں کر سکتے. اور وہ وہاں پڑھے جاتے تھے سونگڑھ میں 2 پہر میں 1:30 بجے سے 2:30 بجے کے بیچ میں، اور سب ودوان بیٹھتے تھے. جب ہم وہاں ہوتے تھے ہم بھی بیٹھتے تھے اس میں، ایک آدمی پڑھتا تھا، گرودیو سنتے تھے، رام جی بھائی، چیم جی بھائی سب بیٹھتے تھے اور سنتے تھے. اور گرودیو کہتے رہتے تھے بھولے لا بھگوان چھ بھولے لا، مجھے تو بہت کرونا آتی ہے، کیا ہوگا اس کا کیا. اور سارے منیوں نے مل کر یہ پرستاؤ پاس کیا کہ کانجی سوامی گیر دگمبر ہیں. آ گیا ان اخباروں میں، مجھے پتا، میں بیٹھا تھا وہاں. ان نے کہا تھا کہ مجھے کس نے دگمبر بنایا جو مجھے دگمبر مٹا سکتا ہے. میں اپنی شردھا سے دگمبر بنا اور مٹوں گا تو اپنی شردھا سے مٹوں گا. جب تک میری ترکالی دھرو بھگوان آتما میں شردھا ہے، کند کند آچاری میں شردھا ہے، کوئی دنیا کے فتواؤں سے میں جینی اجینی نہیں ہوتا. پچاس لوگ کہتے ہیں میں متھدشی ہو جاؤں گا، پچاس کہتے ہیں سمدشی ہو جاؤں گا. میں سمے دشتی سمے جانی اپنے آتما کے انوبھو سے ہوں گا کہ تمہارے سرٹیفکیٹ سے ہوں گا. بولو، اور جب اپنے سے ہوں گا تو پھر سرٹیفکیٹوں کی ضرورت کیا ہے. अच्छा मैं पूछता हूं, क्यों बाबू भाई क्या बिगड़ा गुरुदेव श्री का है? और उनका तत्व ज्ञान आज दिन दूना और रात चौगना सारे विश्व में फैल रहा है कि नहीं है? क्या उनके कारण कि हमारे तुम्हारे कारण फैल रहा है? इसे फैलना था, जितने भव्य भाग्य में बस जोगे बैसा भव्य जीवों को जिन दिन तक तत्व ज्ञान की बात पहुंचनी है वो पहुंचती रहेगी, कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती है। तो ऐसे गुरु के शिष्य होकर ऐसे ऐसे वो ऊंट का उदाहरण देते थे गुरुदेव, ऊंट का उदाहरण याद है? बोलो सर याद है कि नहीं? तुम्हें याद नहीं हो तो मैं बोल सकता हूं, नहीं पता है। वो कहते थे कि जब युद्ध के मैदान में जाते थे हाथी ऊंट घोड़े, तो ऊंट के पीठ पर नगाड़े रखे जाते थे और रण की भेजी बजती थी तो वो बजाते थे, तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किसको होता होगा? तो उसी की पीठ पर रखे नगाड़े और इतने जोर जोर से बजते हैं कि मीलों तक जिसकी आवाज जाए, तो वो ऊंट की हालत क्या होती होगी। अब जब वो युद्ध समाप्त हो जाता था तो सब सैनिकों को छुट्टी मिलती थी और चार्ज इतना खर्च करने को पैसा मिलता था, उसके 100 खून माफ होते थे, और उन जानवरों के भी हाथी घोड़ा ऊंट इनको भी होती, किसी भी खेत में जाए कुछ भी खाएं, कोई किसान उसे अपने खेत में डंडा मार के भगा नहीं सकता था क्योंकि युद्ध को जिताया है उनने। तो एक ऊंट को ऐसा छोड़ दिया तो एक खेत में जाकर वो खेत को चरने लगा, खेत को चरने लगा तो किसान अब मार तो सकता नहीं था डंडा मार करके, तो उसकी छोटी सी पिपारी थी तो ऐसी ले लेकिन ऐसा ऐसा करे जिसकी पीठ पर युद्ध के नगाड़े बजते हो और उससे जो नहीं भगा युद्ध के मैदान में से, तेरी पीपड़ी से भाग जाएगा। अब समझ में आएगा कि जो युद्ध में नगाड़ों से नहीं भागा वो तेरी पीपड़ी बजाने से कैसे भाग जाएगा। गुरुदेव इस अर्थ में कहते थे कि ये मिथ्याप्त नामक जो ऊंट है, ख्याल में आया ना? तो वो जब सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुनी और समोसर में जाके आया तो तब नहीं भगा, फिर भी वहां से लौट के केवल ही आगर रहेगा कोरो लौट के वैसे ही का वैसा आ गया तो तुम जैसे छोटे मोटे पंडितों से क्या होने वाला है, बोलो क्या? और मैं इस अर्थ में कह रहा हूं कि जब वो उतने उतने छह छह अखबार और सारे मुनियों ने मिलकर ये प्रस्ताव पास किए हों तब तक जिनके माथे पर सल नहीं आया, क्यों? तो ये पीपल क्या करेगी इससे क्या क्या होता है? सचमुच मैं आपसे बोलता हूं कि हमने तो कुछ भी प्रयत्न किया है तो इस दिशा में किया है कि थोड़ी बहुत चित्त में अशांति तो का विकल्प खड़ा हो, तो वो कैसे नहीं खड़ा हो इसके बारे में सोच के कुछ प्रयत्न किया होगा जगमान, तो किया होगा, लेकिन बाकी इनके लिए क्या करना है इसके बारे में कुछ नहीं करना है। सब होगा, जो कुछ होना है सब सहज होगा। ये वस्तु की स्थिति, ये गुरुदेव श्री ने इसका नाम तत्व ज्ञान है। तत्व साथ होते हैं और वो पुण्य पाप होते हैं, उनका नाम तत्व ज्ञान नहीं है। वो तो तत्व की चर्चा है। तत्व ज्ञान इसका नाम है कि वस्तु के स्वरूप के आधार पर चित्त की आग में आकुलता कम हो कि ना हो, वो वास्तविक तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान के बल पर ही ये काम किया जा सकता है शेष का।